आगे थी सूरत शोरा, शायर से शोरा पोइट्स। अल्लाह के नबी पे जो एक इल्ज़ाम था शायर होने का, उसका तोड़ा इसमें। और आप नोट कीजिए, फुरकान सूरत में भी नबी सल्लम ही का किरदार था, आप ही की ज़ात थी। शोरा में भी आप पे लगे हुए इल्ज़ाम का तोड़, और इसमें भी आपको पिछले अम्बिया के किस्से मिलेंगे। 227 आयते हैं, लेकिन छोटी छोटी आयते हैं इसकी। तरतीब में 26 नंबर की सूरह। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, लअल्लक बाखियुन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। लोगों की हिदायत के लिए तड़प, रुकू नंबर 5, पहली 9 आयात है, 1-9। तौसीन मीम हरूफ मुकत्तात हैं। ये आयतें रोशन किताब की हैं, इनके ईमान न लाने पर शायद आप तो ये अपनी जान खो देंगे। क्या मुझे आपको भी गम है लोगों की गुमराही का? अल्लाह हमें ये गम अता करे। और अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती, और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई, ये इससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने झुटलाया है, अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मसखरापन कर रहे हैं। क्या उन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डाली कि हमने इसमें तरह तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए? और बेशक इसमें यकीनन निशानी है, और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। क्या पता चला है? तो में अल किताबिल मुबीन, कुरान खुद अपनी सच्चाई की दलील पेश करता है, और कुरान किताबे हिदायत है। आपने मैंने अमल क्या करना है? लोगों को हिदायत की तरफ बुलाने के लिए अनथक मेहनत करनी है। तैयार है? इंशाल्लाह। लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखनी है। महसूस होती? लोगों के ईमान न लाने पर तकलीफ महसूस करनी है। अल्लाह के अजाबों का मजाक नहीं उड़ाना। कायनात पे गौर करके अल्लाह ताला की अजमत को जानना है, और मोमिनों जैसे आमाल करने हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। आगे है आयत नंबर 10 से 33, 10 से 33। हुक्मरानों को अल्लाह का पैगाम देना, जैसे कि मूसा ने दिया, और इसमें अब आपको मूसा का किस्सा मिलेगा। वह इसनादा रब्बू का मूसा, और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि तू जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी ना करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे खौफ है कि कहीं वो मुझे झुटला न दें, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जुबान चल नहीं रही। बस तू हारून की तरफ भी वही भेज, और इनका मुझ पर एक मेरे कसूर का दावा भी है, कत्ल का इल्ज़ाम। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डालें। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा न होगा कि तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो। क्या कहो? बिला शुबा हम रबुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के ज़माने में अपने हाँ नहीं पाला था? देखिए कितना थुड़ दिला एहसान करके जतला रहा है। और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे, फिर तो तू अपना वो काम कर गया जो तू कर गया, और तू ना शुक्रों में है ताने दे रहा है। बंदा अपनी लैंग्वेज से पहचाना जाता है, दिलों में तो कोई नहीं झांक के देखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया था जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था। कन्फेस, इकरार, हाँ भूला हुआ था, कर लिया, अब तो नहीं कर रहा ना। आपको भी कभी को पिछली ज़िंदगी के ताने दे तो आपने भी यही कॉन्फिडेंस दिखाना है इंशाल्लाह। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुमसे भाग गया। कुछ ज़्यादा ही सच नहीं बोल रहे मूसा? फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया, और मुझे पैगम्बरों में से कर दिया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है वो जिसे तू जतला रहा है कि तूने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? तकब्बुर का मारा हुआ जुमला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? हज़रत मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो यकीनन दीवाना है। किसकी तसल्लियाँ हो रही हैं इसमें? नबी सल्लम को तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि आपके भाई मूसा को भी दीवाना कहा गया। आपको भी कोई कह ले तो कह ले, क्या फ़र्क पड़ता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशरिक़ और मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है। अगर तुम अक़ल रखते हो। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बना लिया तो मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली निशानी ले आऊँ, यानी फिर भी। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में है तो इसे पेश कर दे। फिर उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वह इसी वक्त सरी यानी नुमाया अजदहा बन गई और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इसी वक्त देखने वाले को सफ़ेद चमकीला नज़र आने लगा। बिल्कुल किस्सा चल रहा है तसलसल के साथ, आपके मेरे अमल की बातें। अल्लाह के हुक्म पर फौरी लब्बैक कहना है, अल्लाह के आगे अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करना है और दूसरों को भी अल्लाह के कामों में हिस्सेदार बनाना है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, जालिम हुक्मरान के आगे अल्लाह का नाम बुलंद करना है और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना। तौहीद बंदे को जुर्रतमंद कर देती है, अल्लाह हमें तौहीद अता कर दे। आगे रुकू नंबर 7, 34 से 51, हक के आगे बातिल नहीं ठहरता। अब यहाँ जादूगरों का किस्सा आएगा। قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो बड़ा ही दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म देते हो? इन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कारे भेज दें, यानी पैगाम देकर लोगों को बुला लीजिए जो आपके पास ज़ील जादूगरों को ले आएं। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा कर दिए गए और आम लोगों से भी कह दिया गया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओगे ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम इनकी पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। लालच दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो। कॉन्फिडेंस, टेक योर टर्न। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी दिल में कि अगर इन्होंने पहले अपना कर्तव्य दिखा दिया तो फिर मेरी तो बात ही नहीं चलेगी। का नहीं, तुम पहले सुना लो। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी और कहने लगे, इज्जत फिरौन की कसम, हम यकीनन गालिब ही रहेंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, जिसने उसी वक्त उनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए। दिल साफ था ना, कुरान सुनते बिल्कुल दिल खाली करके सुना करें तो फिर फौरन इसी तरह असर भी होगा और अमल भी होगा जैसे इन जादूगरों के ऊपर हुआ। और उन्होंने साफ कह दिया, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा, मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए? अना पे चोट पड़ती है। यकीनन यही तुम्हारा बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखला दिया, सो तुम्हें अभी भी मालूम हो जाएगा। कसम है, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, ला दई, कोई हर्ज नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सच्चा ईमान अंदर आ जाए तो जिंदगी और मौत एक ही बराबर लगती है। हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले ही हैं, यानी जल्दी करो, महबूब के पास पहुँचाओ हमें। इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं, हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हम सब की खताएं माफ़ फरमा देगा। क्या पता चला कि लोगों के तानों से नहीं घबराना, तनकीद सुनकर भी हक पर जमे रहना है, अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन भी रखना है, हक साबित हो जाने पर तस्लीम करना है यानी सर झुका देना है, हक के आगे किसी बातिल से नहीं दबना और अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखनी है, यानी फिरौन के जादूगरों जैसा बनने के लिए वो ईमान मांगना है अल्लाह से। दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा ज़य्यन बि ज़ीनतिल ईमान, अल्लाह हमारे सीनों को ईमान से मुज़य्यन कर दे। आगे है रुकू नंबर 8, 52 से 68। अल्लाह ताला मोमिनों का साथ नहीं छोड़ता। वज़ौहैना इला मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत ही कम तादाद में है। तकब्बुर देखिएगा, कहते थोड़े से लोग हैं वैसे टेररिस्ट टाइप के, लशिर जिमा और शर फैलाने वाले, और इस पर हमें ये सख्त गजबनाक कर रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं इनसे चुकन्ना रहने वाले। तकब्बुर था ना, कहते हम बहुत ज़्यादा हैं और हम बहुत अलर्ट हैं, हमारी तो सीआईडी बहुत है, इंटेलिजेंस ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जी और हमारे हाथ बड़े लंबे हैं। बिलाखिर हमने इन्हें बागात और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इस तरह हुआ और हमने इन तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम यकीनन पकड़ लिए गए। अभी साथियों का वो ईमान नहीं था जो मूसा का था। शुरू में ऐसे ही होता है, घबराहट होती है। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो, मेरा रब मेरे साथ है जो ज़रूर मुझे राह दिखा देगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस इस वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया। और हमने इसी जगह दूसरों को नज़दीक ला खड़ा किया और मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को हमने निजात दी। फिर और सब दूसरों को हमने डबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें से अक्सर ईमान वाले नहीं। और बेशक आपका रब बड़ा ही गालिब और मेहरबान है। आप देखिए कि वक्त का फिरौन डूब गया। अगर आज के दौर की ये शख्सियत होती, शह सुर्खियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ और पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल हरकत में आ जाते। लेकिन उस दौर की ये बातें क़यामत तक के लिए प्रिजर्व कर दी गई। ये खबरें सच्ची हैं, ये झूठी नहीं है। क्या पता चला कि अल्लाह एक सेकंड में उनको, जो खुद को बड़ा समझकर सारी दुनिया के फैसले करें, नीस तो नाबूद कर सकता। और फिरौन डूब गया तो उसके घर और उसकी चीज़ें बनी इसराइल को मिल गई, यानी मुसलमानों को मिल गई। आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है कि सख्त खौफ की हालत में सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना है, अल्लाह ताला को अपना मुश्किल कुशा मानना है, इस बात पर ईमान रखना है कि अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं, ईमान रखना है कि जुल्म के अंधेरों से वही निजात दिलवाता है, और कौमों के इंजाम से नसीहत लेनी है, यकीन रखना है कि अल्लाह अमन अता फरमाता है। आगे आप यहाँ रुकू नंबर 9 से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आएगा, 69 से 104, वतलू अलैहिम नबा इब्राहिम। टॉपिक है मोमिन का दिल, कल्बे सलीम। अल्लाह हमारा दिल बना दे ऐसा। इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या भी सुनाओ, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं, या तुम्हें नफ़ा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा, ये कुछ हम नहीं जानते। देखिए, दलील के मैदान में मुशरिक हमेशा हार जाता है और फिर जिच-विच होकर जवाब नहीं देता, बल्कि क्या कहता है, अरे तुम्हारी तो मत मारी गई। क्योंकि दुनिया में ना शिर्क की कोई जगह नहीं है। तो क्या पता चला, चिढ़ गए या बात का जवाब नहीं देना चाह रहे थे। कहने लगे, हमने तो वैसे भी अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया। आपने फरमाया, कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूज रहे हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय सच्चे अल्लाह ताला के, जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो दूसरों को पालने वाला है। क्या बात है! अब जरा सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज़ देखिए। आई विश के वक्त होता आपको एक एक चीज़ की साथ अरबी पढ़ के बताती। अंबिया कराम कितने बादब होते थे और अल्लाह से बात करने में क्या अंदाज़ था उनका। सुनिए, तर्जमे में फ्लो से भी महसूस कीजिएगा कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से बात की। फरमाया कि वो ज़ात जिसने लजी खलकनी, और वो ज़ात है जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी राहबरी फरमाता है, वही मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफा अता फरमाता है। अच्छी अच्छी चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ, और बीमार होना मेरी तरफ। सुबहान अल्लाह। इसको अंबिया का अदब कहते हैं, मा अल्लाह, अल अदब मा अल्लाह। क्या था कि अल्लाह के बारे में हमेशा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हम भी अपने अल्फाज के आईने में देख सकते हैं कि किस इंसान की हमारे दिल में कितनी इज्जत है। और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा कर देगा, और जिससे उम्मीद बंधी हुई है कि वो रोज़े जजा में मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ऐ मेरे रब, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा। आमीन कहिए। सोने के पानी से लिखी हुई दुआएं। और अगर आज आपके लिए ये दुआएं आपको लग गई ना, या आप कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं आपको लग गई, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में नेकियों के कितने खूबसूरत मौके अल्लाह की तरफ से आएंगे। क्या फरमाए, रब्बी हबली हुक्मम वल हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुझे कुव्वत फैसला करने की तौफीक दे, हिकमत दे, मुझे नेक लोगों में मिला, मैं अपने बारे में सही फैसला करूं। आपको भी जब कोई नेकी की दावत मिले ना, तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह मैं किसी की बातों में ना आऊं, मुझे सही फैसला करने लगे। मेरे अंदर एक जंग लगी हुई है, कभी करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये नहीं, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, मैं खुद ही कर लूँगी, मैं तो घर बैठ के भी कर सकती हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो अल्लाह मुझसे सही फ़ैसला करवा। और मेरा ज़िक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। किन का ज़िक्र खैर पीछे रहता है? जो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े माल वाले होते हैं। आपने किसी एक सहाबी अभी तक माशाल्लाह, हमने यानी अगर 18 पारे किए हैं ना, तो हमने इससे बहुत ज़्यादा सहाबी किए हैं, बल्कि बदर वाले 313 मिला लें तो सैकड़ों कर लिए। किसी एक की भी खूबी आपने सुनी, बड़े ही खूबसूरत थे इसलिए चुनेंगे, बड़े पैसे वाले थे इसलिए चुनेंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे। साइड की बातें हो सकती हैं, लेकिन असल खूबी क्या थी? मेरा जिक्र खैर पीछे छोड़, बाकियात सालेहान। अब तसव्वुर करें, मैं आप सबको अपने साथ सोचवाती हूँ और मैं इंजॉय करती हूँ इसको अक्सर। मैं अपनी कब्र में हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी कब्र, दुआ करें अल्लाह उसको हद निगाह तक खोल दे। और मोमिन की कब्र को ऐसी इतनी दूर खोल दिया जाता है जहाँ तक नज़र दिखती है। खूबसूरत साथी भी आ गया उसमें, कौन? कुरान। अरे एकदम आपको इधर से एक मैसेज आ रहा है, उधर से आ रहा है, आपकी कब्र और खुली हो रही, कोई आ रहा है आपकी कब्र में पर्दे लगा रहा है, कोई आ रहा है तो उधर पेंट कर रहा है, आप करें ये क्या हो रहा है? तो आप कहते हैं वजली लिसान नसित किन फिल आखिरी। पीछे से सदका जारिया के ढेर ही आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, और बिलाखिर फिर मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे। देखिए तौरे कुरंग गुजर रहा है, ख़त्म हो जाना, याद रखिए रमज़ान आए चले जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। क्या बताइए आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, फिर हमेशा की नेमतें, हमेशा की जन्नतें। और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था, और जिस दिन के लोग दोबारा उठाए जाएं मुझे रुस्वा न करना, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम न आए, लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर आ जाए, बेऐब। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल नज़दीक ला दी जाएगी, और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी, और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते रहे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह तआला के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते थे या कोई बदला ले सकते हैं? बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में उंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, और इबलीस के तमाम लश्कर भी वहाँ आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे, और हमें तो सिवाय इन बदकारों के और किसी ने गुमराह ना किया था, अब तो कोई हमारा सिफारशी भी नहीं और ना कोई गमख्वार दोस्त, अगर काश के हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। ये माजरा यकीनन आपके लिए एक ज़बरदस्त निशानी है, इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और यकीनन आपका परवरदिगार नहायत ही गालिब और मेहरबान है। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला अंबिया कराम के इन किस्सों में हमें मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अदब, व इज़ा मरितु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। फिर हिकमत की दुआ देखिए, रब्बी हबली हुक्मं वल्हिकनी बिस्सालिहीन। अलग अलग से भी ये दुआएं मांग सकते हैं और सारी इकट्ठी भी मांग लिया करें। और फिर बात होती है कल्बे सलीम की, 89 शोरा में। कल्बे सलीम क्या है? सलामत दिल। किससे सलामत? शिर्क से, कुफर से और गुमराही से सलामत, निफाक से, बुग़्ज़ से, हसद से पाक दिल, दुनिया और मालो मता की मोहब्बत से पाक दिल, इखलास वाला, इल्म और यकीन कामिल रखने वाला दिल। अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह में कल्बे सलीम बना दे, जो असलमा भी हो, इस्तस्लमा भी हो और मुस्लिम भी हो और बचावा। आपने कहीं केक लेकर जाना है और गलती से आप पहले मंगा चुके हैं और घर भी बच्चों वाला है और वो बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना, ये डिब्बा ना टूट जाए, और ये जो लिफाफा है इसको ना टच करना, क्यों? ये मैंने रात को वहाँ लेकर जाना है। एक केक को आप बचाते हैं बुरा लगेगा, टूटा होगा, हिला होगा, जुला होगा। हालांकि पेश किसको कर रहे हैं? अपने जैसा इंसान। ठीक है, आपसे बड़ा ही होगा आपकी नज़रों में, लेकिन है तो इंसान। अब आप लीजिए अपने इस दिल को, किसको पेश करना है? अल्लाहु नूरु समावाती वलर मसल नूरी का मिशकात। बंदा है मोमिन हर वक्त अपने दिल को साफ सुफ करता रहता है, क्योंकि अल्लाह की याद का घर है। मेहमान आते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, घर साफ हो जाता है। गंदे घर में मेहमान को बुलाकर शर्मिंदगी होती है, क्या मेरा आपका दिल गंदगियों से पाक हो गया? ताकि अल्लाह की मोहब्बत आए। फिर आप देखिए आयत 101 से 102 में हसरत का इजहार है। काश हमें एक मरतबा दुनिया में जाना नसीब होता, तो हम इन मुजरिमों से इलाने बरात करते और ईमान लाने वालों में से बनते, लेकिन फ़ायदा तो नहीं होगा। तो आज दुनिया में अमल कीजिए। मैंने आपने अमल के लिए क्या नोट किया? अपने घर वालों को तौहीद का पैगाम देना, शिर्क की कबाहत अपने घर वालों पर वाज़े करनी है, अपनी हर खूबी को अल्लाह की अता करदा नेमत समझना है, नेक लोगों की सोहबत की ख्वाहिश रखनी है, ऐसे अमल करना है जिनका जिक्र खैर मरने के बाद भी रहे, और जन्नत की तमन्ना करनी है इंशाल्लाह। आगे एक और कौम है, रुकू नंबर 10 105 से 122। कज़बत कौम नूह निल मुरसलीन। अंबिया कराम दाई इलल्लाह कौन थे? रोल मॉडल थे हम सब के लिए। कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया, जबकि इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं, यानी गुनाह करते हो डरते नहीं हो? सुनो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का अमानतदार रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुमसे इस पर कोई अदर नहीं चाहता, मेरा बदला तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के हाँ है, बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फरमाबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया कि क्या हम तुझ पर ईमान लाएं? देखिए अकीर जानने का अंदाज। तेरी ताबेदारी तो रजील लोगों ने की है, यानी क्या गरीब और बौट के आ जाते हैं? कोई अमीर भी आ रहा है, कोई पैसे वाला आ रहा है, कोई पढ़ा लिखा आ रहा है, क्या ये सब गरीब लोग उठ उठ के आ जाते हैं? ये टोन थी। आपने फरमाया, मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते रहे? इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। अगर तुम्हें शऊर हो, पता चला कि दाई दीन को लोगों की पिछली जिंदगी या घर जाकर क्या करते हैं इसकी टो नहीं रखनी चाहिए, कि बस जो समझ आ गया उसकी बात करते और उनको अल्लाह के हवाले कर दीजिए। इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम्हें शौर हो। मैं ईमानदारों को धक्के देने वाला नहीं, मैं तो साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तू बास ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। आपने कहा है, मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया। नबियों के दर्द को महसूस करें, खुदा ना खास्ता कोई एक बच्चा बदतमीज़ी करे ना, तो माँ बाप को बाकी बच्चों की इज्जत करना भी नहीं महसूस होता। अंबिया कराम का ताल्लुक बिल्कुल वही होता था जो औलाद के साथ माँ बाप का होता है। कितनी तकलीफ़ पहुँचाई उम्मतियों ने अपने नबियों को। बस तुम मुझ में और इनमें कोई कतई फैसला कर दे, और मुझे और मेरे बाईमान साथियों को निजात दे। चुनाचे हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करा के निजात दे दी। बाद हजां बाकी तमाम लोगों को डुबो दिया गया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है, इन लोगों में से अक्सर ईमान लाने वाले थे भी नहीं, और बेशक आपका परवरदिगार बिल्कुल वही है, अलबत्ता ज़बरदस्त रहम करने वाला। तो क्या सीखा? गलत काम करने वालों को अल्लाह का खौफ दिलाना है, दूसरों की टो नहीं लेनी, किसी का तजस्सुस नहीं करना, कहीं से हो के गुजर भी गए तो परवाह नहीं करनी कि आपके इर्द गिर्द क्या रखा, क्या हो रहा है, कौन नहीं। और ये बहुत बड़ी खूबी होती है किसी इंसान की, अल्लाह हमारे अंदर इसको कूट कूट के भर दे। अपने से कमतर लोगों को नहीं धुतकारना, अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करनी है और ईमान वालों के लिए दुआ खैर करनी है, और ईमान ना लाने वालों के इंजाम से डरना है। आगे एक और कौम है, आयत 123 से 140। कोई कुव्वत अल्लाह की कुव्वत से भरकर नहीं। कज़्ज़बत आद उनिल मुरसलीन। आदियों ने भी रसूलों को झुटला दिया, जबकि इनसे इनके भाई हूत ने कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के ही पास है। और क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो, और सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गो कि तुम यहाँ हमेशा रहोगे। 3 सेकंड गौर कीजिए। तुखलदून, ऐसी दुनिया से दिल लगा लिया कि तुमने यहाँ से जाना ही नहीं। और जब किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बाग़ात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, आप वाज कहें या वाज करने वालों में ना हो, हम पर यकसा है, यानी हमें कोई असर नहीं होना। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम हरगिज अजाब ना दिए जाएंगे। चूंकि आदियों ने हजरत खुद को जुटलाया, हमने इन्हें तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है और इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही है गालिब मेहरबान। क्या सीखा? दुनियावी चीज़ों में वसाइल का ज़िया नहीं करना, अपनी आराइशों की सजावटों पर बेजा वक्त नहीं लगाना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना, दाई इल्लाह की नसीहत को मानना है, उसको हकीर नहीं जानना, खुद को अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं समझना, और वाज और नसीहत को सुनकर अपने आमाल को दुरुस्त करना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है जी कौमे समूद का किस्सा, रकू 12:141 से 159। अपनी महारत पर गरूर ना करो, यानी जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझे। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने भी पैगंबरों को झुठलाया। इनके भाई साले ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांगता, मेरी उजरत तो बस अल्लाह परवरदिगारे आलम ही पर है। क्या इन चीज़ों में जो यहाँ है तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे? ज़रा से इन आयतों के दर्द को महसूस कीजिए, बड़ी उदास करने लिए आते हैं। क्या तुम यही छोड़ दिए जाओगे, यानी इन बागों और इन चश्मों में और इन खेतों और खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरमो नाजुक हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ़ मकानात बना रहे हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया, यानी फिर शुरू हो गए, फिर बातें करने लगे ये टोन। तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, अगर तू सच्चों से है तो कोई मौजजा ले आ। आपने फरमाया, ये है ऊँटनी, पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्रर दिन की पारी पानी पीने की तुम्हारी। खबरदारी से बुराई से हाथ न लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कूचें काट डाली। कूचे क्या होते हैं? पाँव के पट्टे, यानी ये पीछे से जो होते ना जिसके पर खड़ा होता जाता है। बस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इनको आ दबोचा। बेशक इसमें इबरत है और इनमें अक्सर लोग मोमिन ना थे, और बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त और मेहरबान है। क्या पता चला कि अपनी नेमतों पर इतराना नहीं। अल्लाह जो नेमत दे ना उसके साथ आजजी की नेमत भी ले लें। अपनी नेमतों को फ़ानी समझना है, अल्लाह की हदूद का ख्याल रखना है, फसाद फैलाने वालों का साथ नहीं देना, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करना है और अल्लाह की हदूद को पामाल नहीं करना। आगे है जी 160 से 175, रुकू नंबर 13। फेले बद को जायज़ मानने वालों का अंजाम। कज़्ज़बत कौम लूत इनिल मुरसलीन, कौमे नूत ने भी नबियों को झुटलाया। इनमें से इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला भी नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहान का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो? यानी हैरत का अंदाज है, प्रवोक किया जा रहा है। और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बना दिया, इनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम खुद ही हद से गुजर जाने वाले हो। उन्होंने जवाब दिया, क्या लूत, अगर तू बास ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा। धमकियाँ। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। नोट कीजिए, आज हमें भी हर अपने उस प्यारे को यही कहना है जो हमारे समझाने पर ना समझे, तो फिर आप उसके साथ ना मिल जाएं, फिर आप उन्हें कहें कि मैं आपके इस काम से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस बवाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इसके और इसके मुतल्लिकीन सब को बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में हो गई। फिर हमने बाकी और सब को हलाक कर दिया और हमने इन पर ख़ास किस्म का मी बरसाया। बस बहुत ही बुरा था मी जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। बारिश है पत्थरों की। ये माजरा भी सरासर इबरत है। इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है गलबे वाला मेहरबानी वाला। बार बार ये किस्से हमें इन जरायम से बचने की दावत देते हैं। क्या सीखा? फेले लिवातत से नफरत करना है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, अल्लाह के जायज़ करदा रिश्तों से ताल्लुक़ बनाना है, माशरे के फितनों से पनाह मांगनी है, खुद को और अपने घर वालों को फितनों से बचाना है, अल्लाह का खौफ खाने वालों का साथ देना है और अपनी औलाद को पढ़ाई लिखाई और कुछ और नामों पे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। बहुत बड़े बड़े फितने हैं। यकीन करें कि पढ़े लिखे बच्चे, डॉक्टर्स बच्चे और इसी तरह की बड़ी बड़ी डिग्रीज रखने वाले बच्चे जिनसे शादियां ब्याह कर दी गई बच्चियों की, कि बच्चा तो बाहर से पढ़ के आया है, बाद में पता चला कि वो बच्चा गे है, उसके औरतों से नहीं मर्दों से ताल्लुक़ छोड़ दिया। कशिश ही नहीं ऐसे लोगों का अपनी बीवी में। तो अल्लाह हमारी नस्लों को इन फितनों से बचा दे। आगे 176 से 191 रुकू नंबर 14। अपने नाप तोल के पैमानों को दुरुस्त रखो। कज़्ज़बत अस्हाब उलैकत अल-मुरसलीन, एका वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। एक नया नाम है इस कौम का। और जबकि इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम्हें डर खौफ नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत भी नहीं चाहता, मेरा अजर तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत न करो और सीधी सीधी सही तराजू से तोला करो। लोगों को इनकी चीज़ें कमी से न दो, बेबाकी के साथ ज़मीन में फसाद न मचाते फिरो। तो क्या पता चला कि नाप तोल में कमी और मिलावट फसाद का पेश खेमा बनती है। फिर इसी तरह मुआवजा ज़्यादा लिया जाता है और चीज़ कम दी जाती है। और इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है और तू तो हम जैसा एक इंसान है और हम तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। देखे अपने लिए क्या मांग रहे, तौफीक मांगते अजाब मांग रहे हैं। कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो, चुनाच उन्होंने इसे जुटलाया तो इन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था और यकीनन इसमें निशानी है और इनमें से अक्सर मुसलमान न थे। यहाँ मुसलमान का लफ्ज़ क्या है? मती नहीं थे, बात नहीं मानते थे। और यकीनन तेरा परवरदिगार अलबत्ता वही है गलबे वाला मेहरबानी वाला। क्या पता चला कि जिनके सर पे गुनाहों का भूत सवार हो जाता है उनको वक्त के नबी की बात भी समझ नहीं आती। तो क्या सीखा? दुरुस्त नाप तोल के साथ चीज़ों को फरोख्त करना है, नाप तोल में कमी जो है उसको गुनाह समझना है, हमेशा अल्लाह का खौफ रखना है और एक अल्लाह की तरफ बुलाने वालों का एहतराम करना है, गलत मुतालबात से बचना है और हर अमल करते हुए यकीन रखना है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। क्या पता चला कि लोग अपने लिए खुद घड़ा खोदते हैं। आगे रुकू नंबर 15 192 से 227। अब सूरत का नाम, सूरत के एंड पे इसके ऊपर कुछ बातें हैं। वइन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन, कुरान का नज़ूल कुफ्फार के लिए इत्माम हुज्जत। और बिला शक व शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पर उतरा है कि आप आगाह करने वालों में से हो जाएं। साफ अरबी जुबान में है, अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तذکرہ है। क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि कुरान की सच्चाई का तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं? और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता तो ये इसे बावर करने वाले ना होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया कि वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहजा ना कर लें ईमान न लाएंगे। बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा और इन्हें इसका शऊर भी ना होगा। क्या नोट किया आपने? अल्लाह ताला पहले मोहलत देता है, फिर जब लोग नहीं मानते ना तो ऐसी जगह से खींचते हैं कि पता ही नहीं चलता। और इस वक्त कहेंगे, क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी? बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? अच्छा ये तो बताओ, अगर हमने इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो दोबारा वो अजाब इन्हें आ लगा जिससे ये धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे, इनमें से कुछ भी फ़ायदेमंद ना हो सका, और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया, मगर इस हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। इस कुरान को शयातीन नहीं लाए, ना वो इस काबिल हैं, ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए। बस तू अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकार कि तू भी सज़ा पाने वालों में से हो जाए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। ये है आयतु 14, जिसके बाद नबीम ने खुल्लम खुला दावत दी थी। ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की आयत है। वन ज़ीरो शीरत अल अक़रबीन, क्या हम अपने रिश्तेदारों को दावत दे चुके? याद रखिए, सबसे मुश्किल है रिश्तेदारों को बुलाना। अल्लाह हमें इतना बड़ा दिल दे दे कि अगर उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ भी आ जाए तो हम उस पर सब्र कर सकें। और इसके साथ नरमी से पेश आ, जो भी ईमान लाने वाला हो, कि तेरी ताबेदारी करे। अगर ये लोग तेरी ताबेदारी करें तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रख, जो तुझे देखता है जबकि तू खड़ा होता है। ये कौन से खड़े होने की बात है? कितनी आप देखिए खूबसूरती के साथ कुरान एक से एक बात करता है। और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी, वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, उचटती हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं और कहते हैं जो करते नहीं? ऐसे ही ना, तेरे लिए आसमान के सितारे तोड़ के लाऊं तो ले आइए थोड़े से। नहीं, ये तो मैं कर नहीं सकता। चलो फिर बाजार से दूध ले आते हैं, इतना ही काफ़ी है। आप देखिए कि शायरी में क्या कलाबे हैं। उनकी जुल्फें काली रात की तरह लंबी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी आपके ये सर के बालों से शुरू होकर अगर चलते गए ना सिरों तक, उम्र ख़त्म हो जाएगी, बाल नहीं ख़त्म होंगे। कोई औरत चुड़ैल है कि वो कौन है? बातें ही हैं, बस सिर्फ बातें। अच्छा, एक उम्र होती है, बड़ा मज़ा आता है। उसकी आंखें कैसी, उनके कान कैसे, बाद में सारा इकट्ठा करें तो भैंस आती है जहन में, मोटी मोटी आंखों वाली। लेकिन बस चले, सिवाय इनके जो ईमान लाए, हसान बिन साबित को याद कर ले इन आयतों पर, और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया, जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब ये आयत मंज़िर अशीरत अकल अक्रबीन नाजिल हुई, यानी 214 आयत है, तो अल्लाह के नबी ने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर पुकारा, ए मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा, ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफ़िया, क्या थी आपकी फुफो, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, यानी आपके चचेरे भाई, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता, हाँ मेरे माल में से जो चाहो मुझसे मांग लो। सही मुस्लिम 543। यानी आपने एक एक का नाम लेकर पुकारा कि आ जाओ इस दीन पे। आपके मेरे अमल का नुक्ता, कुरान को दिल से पढ़ना है, इसकी हर आयत पे ईमान लाना है, कुरान के अजाबों की खबर को सच जानना है, हर तरह के शिर्क से बाज रहना है, और अपने घर वालों को शिर्क के अजाब से खबरदार करना है, काफिराना अशार को सुनने से परहेज़ करना है। तो सूरत शोरा का फिर पैगाम क्या है? अल्लाह रसूल की इताअत करनी है और अपने रिश्तेदारों को दीन की दावत देनी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। मुहासबा करते हैं, क्या मैं करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाती हूँ? क्या मैं इनको अंजाम से डराती हूँ? क्या मैं अल्लाह को कसरत से याद करती हूँ? क्या मैं हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करती हूँ? और अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।